ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराश्रम भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 5 बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग हमारे साथ इसको उच्चारण कीजिएगा। ततो यतत कुशलम, ततो यतत कुशलः, क्षेमाय भवमासित, शरीरं पौरुषं यावन् विपद्यते पुष्कलम्। ततो यतत कुशलः, क्षेमाय भवमासित, शरीरं पौरुषं यावन् विपद्यते पुष्कलम्। ततो यतत कुशलः, क्षेमाय भवमासित, शरीरं पौरुषं यावन् विपद्यते पुष्कलम्। शब्दार्थ ततो अतएव यतन्त प्रयत्न करना चाहिए, कुशल बुद्धिमान मनुष्य जो जीवन के अंतिम लक्ष्य में रुचि रखता हो, क्षेमाय जीवन के असली लाभ के लिए या भव बंधन से मुक्ति के लिए। भवम आश्रित जो संसार में है, शरीरम शरीर, पौरुषम पुरुष का, यावत जब तक, न नहीं विपद्यते सफलता होता है, असफलता होता है, पुष्कलम पुष्ट पुष्ट। अनुवाद आप लोग हमारे साथ बोलिए। अतएव इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हुष्ट फुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त ना हो, तब तक वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का अभ्यास करे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा है, कोमर आचरत प्राज्ञ, प्राज्ञ शब्द उस व्यक्ति को बताता है जो अनुभवी है तथा भले बुरे का पहचान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने आर्थिक उन्नति के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह कार्य करते हुए इस अमूल्य जीवन तथा अपने शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस श्लोक के भवम आश्रित के स्थान पर भयम आश्रित पाठ भी उपलब्ध है, किंतु हम चाहे जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें, निष्कर्ष वही निकलता है, भयम आश्रित सूचित करता है कि भौतिकतावादी जीवन शैली सदैव भय से पूर्ण है, क्योंकि पद पद पर डर बना रहता है। भौतिकतावादी जीवन चिंता तथा भय से पूर्ण है, भौतिकतावादी जीवन चिंता तथा भय से पूर्ण है। इसी प्रकार भवम आश्रितम पाठ स्वीकार करने पर भवम अनावश्यक झंझट तथा समस्याओं का सूचक है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मनुष्य भवम में आ पड़ता है, जहां पर निरंतर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से चिंतित रहता है। इस तरह मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। मानव समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार के सामाजिक प्रणाली में विभक्त तो होवे किंतु हर एक व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो। यदि कोई भक्ति के बिना रहता है तो उसका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र होने का कोई अर्थ नहीं निकलता। कहा जाता है स्थानत भ्रष्ट पतंति अधः, कोई चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, कृष्ण भावनामृत के अभाव में उसका पतन अनिश्चित है। विज्ञ पुरुष अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहता है। यह विधान है, मनुष्यों को अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तभी तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है। अतएव हमें इस तरह रहना चाहिए कि हम मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहे, जिससे हम जीवन के लक्ष्य एवं समस्याओं से भरे हुए जीवन के बीच अंतर कर सकें। विचारवान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीख कर इस तरह से कर्म करना और जीवन के लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य समाप्त होता है। तो इसमें भागवतम के सातवें स्कंध में प्रहलाद महाराज के चरित्र को हम सुनेंगे। तो इस अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उपदेश देते हैं, भगवत संदेश उनको देते हैं। आप जानते हैं सब प्रहलाद महाराज महाजन हैं और वे जो हैं वो भक्ति संप्रदाय के गुरु हैं, तो उनसे हम जो है शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। जो वैष्णवगण प्रभुपाद कहा करते हैं कि हम लोग जो भक्ति की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं इन 12 महाजनों से हम भक्ति की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज की शिक्षा इस भागवतम के सातवें स्कंद के छठे अध्याय में प्रारंभ हो रहा है और बहुत सुंदर शिक्षा है, आगे प्रगति करेगा, बहुत सुंदर शिक्षा इसमें प्राप्त हो रहा है। तो इस जो आज के तात्पर्य में अनुवाद में जितना सुंदर प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं भरी थी अनुवाद में, उसी प्रकार प्रभुपाद का तात्पर्य भी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे। प्रभुपाद बता रहे कि इसी अध्याय के प्रारंभ में प्रहलाद महाराज ने प्रथम श्लोक कहा, को मारा आचते प्राज्ञ धर्मात भागवत निहम, दुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थतम। प्रभुपाद बता रहे कि जो प्राज्ञ व्यक्ति कहा जाता है, जो अनुभवी व्यक्ति को प्राज्ञ कहा जाता है, जो कुछ जानता हो, तो प्राज्ञ व्यक्ति को चाहिए कि जो अनुभवी है शिक्षित है उनको ये चाहिए कि अपने जीवन को कुत्ते बिल्लियों की तरह नष्ट ना करें, उसमें अपने अमूल्य जीवन को, बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसको हम व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग केवल इस शरीर की आवश्यकताओं के लिए अपने कार्य को करते रहेंगे, इसी की चिंता करते रहेंगे, यही है कुत्ते बिल्लियों का जीवन। तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है हमें जो है ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए, हम अपने जीवन के अनेक अनेक दुखों को समाप्त कर सकते हैं जब हम इसका सदुपयोग करेंगे। इस शरीर को अगर हम सदुपयोग करेंगे तो हमारे जन्मों जन्मों का दुखों को हम समाप्त कर सकते हैं। 84 लाख प्रकार के जो योनियां हैं उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए जीवन जो है बहुत अमूल्य जीवन है। तो जो शिक्षित है, जो अनुभवी व्यक्ति है, उसको चाहिए कि वो अपने शरीर का ऐसे उपयोग करना चाहिए जिससे कि वे सारा जो है जो मुख्य उद्देश्य उसको करना है कि हमें संसार के भवसागर से पार निकलना है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का प्रपट था। और प्रभुपाद और भी कई विषय में इसमें चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हमें शिक्षाप्रद चीज है, इसीलिए हमें इन प्रपटों को थोड़ा समझने का प्रयास किया। तो इसमें आज के श्लोक में भवम आश्रित लिखा हुआ है। तो प्रभुपाद बता रहे भवम आश्रित भयम आश्रित दोनों ही प्रयोग हो सकता है। तो ये संसार जो प्रभुपाद बता रहे कि संसार जो है चिंता और भय से पूर्ण है, भरा हुआ है। किसी भी स्थिति में हम चिंता और भय के साथ ही हमारा पूरा जीवन बीतता है। मान लीजिए हम लोग कुछ कारोबार कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं, चिंता जरूर करना पड़ता है। चिंता करते हैं, उसके लिए हम मेहनत करते हैं, चिंता करते हैं तो धन अर्जित करते हैं। तो पहले आपने जितना धन कमाया चिंताग्रस्त होके धन कमाया, अभी आपको भय लगा हुआ है कि धन नष्ट नहीं होना चाहिए, कहीं धन चोरी ना हो जाए, कोई लेना जाए, कोई हमें ठग ना ले, तो इसका भय बना रहता है। तो संसार वैसे ऐसे ही है, जिस संसार में हम रहते हैं संसार वैसे ही है कि भय और चिंता से सदैव परिपूर्ण रहेगा। तो जो और प्रभुपाद बता रहे कि जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों वर्ण को चाहिए कि भगवान की भक्ति करें, क्योंकि हम लोग भगवान की भक्ति के द्वारा ही हम ये चिंता और भय से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बताते भी है, आप चिंता मत करो, सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापभ्य मोक्षयस्मी मा शुच, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा, तुम चिंता मत करो। तो जो भी जो चार वर्ण में चाहिए कि उसको भक्ति करना चाहिए, अगर चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर ये भक्ति नहीं करता तो प्रभुपाद बता रहे स्थानात भ्रष्ट पतंत्यत, तो अपने स्थान से नीचे गिर जाता। उसी प्रकार हम जो मनुष्य है, मनुष्य शरीर में हम निश्चित किसी ना किसी वर्ण में हैं, तो हमें चाहिए कि भगवान की भक्ति को करें। अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो हम ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना ब्राह्मण है, हम अपने जो वर्ण में वो नहीं रहेंगे, हमारे वहां से पतन हो जाएगा। तो एकमात्र भगवत भक्ति के द्वारा हम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद बता रहे कि भगवत भक्ति के द्वारा ही हम अपने वर्ण में स्थित हो सकते हैं। हम चाहे किसी वर्ण में रहे, अगर भक्ति नहीं कर रहे तो वो हम उस वर्ण में नहीं है। वर्ण का उद्देश्य ही है कि भक्ति करना, किसी वर्ण में रहने का हमारा उद्देश्य है कि हम भक्ति करें तो वो परफेक्ट है। और प्रभुपाद और भी एक सुंदर सा बात बता रहे कि मनुष्यों को अपने उच्च पद से कभी नीचे गिरना नहीं चाहिए। हम लोग अपने जो भी है, जो भी हमें ऑफिस में समाज में हमें जो भी पद प्राप्त होता है, तो प्रयास ये रहता है कि हम उस पद से कभी नीचे ना गिरे, कोई छोटा पद ना प्राप्त हो, उससे हम ऊंचा ही पद प्राप्त हो। ये वास्तव में बुद्धिमानी है। तो ये भी बुद्धिमानी है कि अगर हम मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हम आगे जाके कहीं फिर दोबारा हमें पशुओं में जाना ना पड़े। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि इसका जो मनुष्य शरीर का सदुपयोग करते हुए हमें, जैसे कि इस श्लोक के अनुसार बताया गया है कि हमें अपने जब शरीर हमारा हिष्ट पुष्ट है, हमारा शरीर में शक्ति है, हम सब कुछ इस समय कर सकते हैं, तो इसी समय हमें भगवत भक्ति को कर लेना चाहिए। अगर हम इस कम उम्र में हम भगवत भक्ति को करेंगे वो बाद में बहुत काम आएगा। बाद में बुढ़ापा में क्या वो मेहनत करेगा भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उसका शरीर ही साथ नहीं देगा, तो क्या वो मेहनत करेगा? तो सबसे मुख्य चीज है प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के अनुसार कि हमें कि हमारा हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, यही एकमात्र हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर इस समय हम लोग भक्ति कर लेते हैं, वास्तव में बाद में अगर अभी हम पेड़ लगाए तो बाद में हमें फल मिलेगा, भक्ति का फल मिलेगा। अब वृद्ध अवस्था में हम क्या पेड़ लगाने जाएं, क्या फल देगा, हम क्या संतुष्टि भोग कर पाएंगे? तो इसीलिए प्रहलाद महाराज की सुंदर शिक्षा यही है कि हमें जो है जब तक हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है अपने जीवन के परम कल्याण को प्राप्त करने के लिए। इसमें कहा गया ना, कुशलम क्षेमाय भवमाश्रितम् तत यतत कुशलम। अगर देखो इस समय आपको इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, यतंत कुशलम, अपने सबसे कुशल मंगल का, कुशल का, भलाई का प्रयास करना चाहिए कि क्षेमाय भवम आश्रित, ये भवसागर को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। शरीरम पौरुष यावन विपद्यन्ते पुष्कलम। तो ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है इसमें अभी शक्ति है, एनर्जी है, इसे प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे, 5 वर्ष के बालकों को शिक्षा दे रहे। तो चाहिए कि इसी समय हमें भगवत भक्ति और भक्ति को प्रारंभ करना चाहिए। तो इस भागवतम के 7वें स्कंद में 5 साल का बालक प्रहलाद महाराज कितना सुंदर उपदेश दे रहे, आगे भी बहुत सुंदर सुंदर उपदेश से हम जो है प्राप्त करेंगे। तो प्रहलाद महाराज भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, वो माता के गर्भ में ही उन्होंने नारद जी से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके थे। तो हमें प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों को समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज जो है वो हमारे गुरु है, वो हमें शिक्षा दे रहे भागवतम में, इस शिक्षा का हमें जीवन में अमल करना चाहिए। तो ऐसे महाभागवत प्रहलाद महाराज के कुछ गुणों के विषय में चर्चा करेंगे। तो प्रहलाद महाराज के अनेक गुण के विषय में भागवत में वर्णन किया गया, बहुत वर्णन किया गया 4वें अध्याय में। तो नारद जी इस कथा को रिलेट कर रहे हैं, कहां पर कथा हो रही है? राजसीय यज्ञ में शिशुपाल के वध होने पर वहां पे युधिष्ठिर महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ, जब उसे तो आश्चर्य हुआ तब जब उन्होंने प्रश्न पूछे। तो कथा बहुत पीछे है, बहुत जो है लंबी है। तो उसे प्रहलाद, उस समय नारद मुनि प्रहलाद महाराज का शिशुपाल का कथा को कहते हुए कि पिछले जन्म में जो है शिशुपाल जो है हिरण्यकश्यपु, रावण था, रावण और कुंभकर्ण थे, उसे पीछे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष थे। तो हिरण्यकश्यपु का पुत्र हुए प्रहलाद महाराज। तो उस प्रहलाद महाराज के चरित्र को वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर कथाएं प्रारंभ हो रहा है। तो कुछ प्रहलाद महाराज गुण इस प्रकार है कि इससे पहले बहुत सारे गुणों को वर्णन किए, फिर कभी हम इसको सुनेंगे। तो कुछ गुण इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर नारद जो है प्रहलाद के गुरु है और गुरु ही अपने शिष्यों का गुणगान कर रहे हैं। अगर शिष्य होना हो तो ऐसा होना चाहिए कि गुरु संतुष्ट हो जाए, शिष्य के शिष्यता से संतुष्ट हो और हर जगह जाके बोले हाँ मेरा शिष्य जो है इस प्रकार है। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज बता रहे कि यस्मिन महत गुण राजन गुह्यन्ते कभी भी मुहुर, प्रहलाद महाराज के यशविन महत गुण राजन, बहुत बहुत गुण है, महत गुण, महान महान गुण है। गुणों का खान थे प्रहलाद महाराज, महत गुण राजन गुहंती कभी भी मुहर। ये के जो बड़े बड़े कवि हैं, सुखदेव गोस्वामी, इंद्र, नारद जी, जो ये लोग जो है हमेशा उनका गुणगान करते हैं। कभी भी देव सभा में, किसी धर्म सभा में जब किसी भक्त का उदाहरण देना होता है तो वो देवता लोग भी प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते। देखो जो प्रहलाद जो है ये असुरकुल में पैदा होकर भी कितने महान गुणों को अर्जित किया है। किसी को शिक्षा देना हो तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हैं, ऐसे गुणों के खान थे प्रहलाद महाराज। कई बार प्रहलाद महाराज तो पूरा संसार में भ्रमण करते रहते हैं, कई बार उनको स्वर्ग भी जाते हैं भ्रमण करते, वो भगवत पार्षद है, प्रचार के कार्य में कभी कभी बाहर निकलते, कभी कभी उनके पोता जो है सुतल लोक में रहते हैं बलि महाराज, उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं, वहाँ कुछ हरी कथा हो जाती है, कभी कभी अलग अलग जगहों में भ्रमण करते प्रहलाद महाराज भ्रमण करते ही है। तो कभी कभी इंद्र, इंद्र के सभा में भी प्रहलाद महाराज चले जाते हैं, तो इंद्र अपने सिंहासन छोड़ के खड़े हो जाते हैं, प्रहलाद महाराज को वो जो इंद्र आसन जो है प्रहलाद महाराज को देते, प्रहलाद महाराज का पूजा करते। तो इस प्रकार हर कोई उनका आदर करता है, उनका सम्मान करते हैं। तो यहाँ तक कि देखिए युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि कह रहे सभी लोग गुणगान करते, सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव जी, नारद जी, बड़े बड़े कविगण जो है, ज्ञानी, साधु, संत, श्रील प्रभुपाद जी भी प्रहलाद महाराज गुणगान कर रहे हैं। वैष्णव समाज में प्रहलाद महाराज गुणगान होता है। जैसे भगवान का गुणगान पूर्व काल में हो रहा था, वर्तमान काल में हो रहा है, भविष्य में भी होगा, वैसे ही प्रहलाद महाराज का गुणगान जो है पूर्व काल में भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। गुणों को व्याख्यान कर रहे नारद मुनि। और यहां तक कि देखिए युधिष्ठिर महाराज कभी कभी आप ही उदाहरण देते हो, जब आपके जीवन में भी जब संकट आता है, आपके भाईगण जब विचलित हो जाते हैं, आपकी राज्यसभा में प्रजाएं जब विचलित हो जाते हैं, आप ही उनको कई बार उदाहरण देते हो। प्रहलाद महाराज को आप लोग आइडियल बनाते हो, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है, आप भी कभी कभी उदाहरण देते हो। यहां तक कि दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज ये भी बता रहे, जैसे प्रहलाद महाराज का गुणगान होता है, जैसे भगवान का गुणगान होता है, जैसे प्रहलाद महाराज का गुणगान होता है, जैसे ही आपका भी गुणगान हो रहा है। इस समय राजसूय यज्ञ में तो आपका यश चारों तरफ फैल रहा है, जैसे आपका यश फैला है वैसे प्रहलाद महाराज का भी यश फैल रहा है। तो यहाँ नारद जी जो है सोच रहे कहीं ऐसे ना सोचे कि युधिष्ठिर महाराज की जो है नारद जी प्रहलाद महाराज बड़े भक्त हैं और मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, तो युधिष्ठिर महाराज उनका गुणगान नहीं, आपका भी जो यश जो है बहुत फैल रहा है, ये भागवत श्लोक में ही ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखिए नारद जी के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए भगवान एक बार खंबे से प्रकट हुए, और आपके घर में तो भगवान हमेशा ही रहते हैं, भगवान कृष्ण जो है हमेशा ही आपके घर में रहते हैं, कि भगवान कृष्ण कहने के लिए तो गुजराती है लेकिन रहते हमेशा हरियाणा में रहते हैं, युधिष्ठिर महाराज के साथ ही रहते हैं। तो आगे बता रहे कि प्रहलाद महाराज के गुणों को कह रहे, उनके असंख्य गुण है, मैं कहां तक उसका वर्णन करूं, असंख्य गुण जो कि गिनती भी नहीं कर सकते। हम भक्तों का कुछ गुणों को गिनती करते हैं, भक्तों का 26 गुण या कुछ और भी ज्यादा हम गुणों का वर्णन कर सकते, गुणों को हम लोग जो है लिख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज के गुणों को हम लिख नहीं सकते क्योंकि उन असंख्य गुण है, कितना लिखे, लाख गुण लिखे या हजार लाख या करोड़ लिखे, असंख्य गुण है, कितना लिखोगे कह रहे। लेकिन फिर भी ये समझ लीजिए, ये सिद्ध वाक्य ये समझ लीजिए, अगर आप गिनती नहीं कर सकते तो मोटा मोटी ये मान लीजिए कि वे एक महात्मा थे। महात्मा कहने मात्र से सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, क्योंकि महात्मा जो है वे भगवान के जो योग माया की शक्ति के प्रभाव में रहते, महामाया के प्रभाव में रहते नहीं, वो सदैव भगवत भजन में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अब भगवान की सेवा में लगने से स्वाभाविक रूप से उनमें सारे दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज में जो है सभी दिव्य गुण के खान थे, असंख्य गुण है। ये असंख्य गुण किस क्यों है, क्योंकि वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी मृति, क्योंकि भगवान वासुदेव में उनकी जो है भक्ति थी। यस्य नैसर्गिकी मृति, जैसे प्राकृतिक स्वभाव जो है, जैसे हमारा स्वभाव होता है, हर किसी का स्वभाव है अलग अलग प्रकार का स्वाभाविक होता है, वैसे ही प्रहलाद महाराज का स्वभाव था भगवत भक्ति करने में, उनका स्वभाव है, वो स्वभाव से ही भगवान के प्रति आसक्त थे, भगवान में रति थी। तो जैसे अभी हमारी रति होती है भौतिक विषयों में हमारी रति, तो प्रहलाद महाराज का भी वैसे ही रति भौतिक विषय में नहीं था, भगवान वासुदेव में थी। प्रहलाद महाराज वास्तव में, अभी कुछ हम जो है विचार आती है कि प्रश्न उठ सकता है कि प्रहलाद महाराज तो नरसिंह भगवान के भक्त हैं, तो कृष्ण के भक्त नहीं है, तो श्लोकों से पता चलता है कि वास्तव में प्रहलाद महाराज कृष्ण के ही भक्त थे। कृष्ण गृह गृहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने, जो शनि ग्रह होता है, ये सब ग्रह होता है, राहु केतु ग्रह होता है, तो मनुष्य ग्रासता है तो उसका जीवन तो बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो ये प्रहलाद महाराज को एक राहु सेनु शनि केतु ये सब कोई ग्रह नहीं था, उनको कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको ग्रसित किया हुआ था। तो कृष्ण के भक्त थे, लेकिन उनको जब नरसिंह भगवान के सामने प्रकट हुए तो वो नरसिंह भगवान के जो है सुंदर रूप में वो आसक्त हो गए, बस उसी रूप से वो संतुष्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रहलाद महाराज सिर्फ नरसिंह भगवान की कथा सुनते, आप कुछ कथा नहीं सुनते, वो सब कथाएं सुनते हैं, सब कथाएं सुनते हैं। प्रहलाद महाराज है शांत रस के भक्त, शांत रस के भक्त, हनुमान जी को दास्य रस के भक्त में हम गिनती करते हैं। लेकिन देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि शांत रस के भक्त में भी क्या शुद्ध भक्ति का गुण था। जैसे शुद्ध भक्ति में शांत होती है श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, निष्ठा, भाव, रुचि, प्रेम, ये जो होता है वे सब जो है शांत रस के भक्त प्रहलाद महाराज में भी ये शुद्ध भक्ति के गुण दिखते हैं। वो वास्तव में प्रेम के स्तर पे थे, निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम के स्तर पे थे, इस भागवतम के श्लोक में पता चलता है। तभी तो इन दिव्य गुणों से युक्त शुद्ध भक्त थे, तभी तो वो अपने सहपाठियों को उपदेश दे रहे थे। बहुत सुंदर, प्रहलाद महाराज का जो उनको खेलकूद करने में कोई रुचि नहीं था। न्यस्त क्रीड़ने के बाला जड़वत मनस्त था, वो बच्चों के साथ खेलकूद करने में किसी प्रकार उनमें रुचि नहीं थी, और हमेशा जड़वत के समान रहते थे। जड़वत जैसे जड़ होता है, जैसे कोई पत्थर होते हैं, पत्थर को कहीं रख दिया तो वहीं पड़ा रहता, जैसे टेबल है यहाँ रखा हो तो ऐसे पड़ा रहेगा, सो जड़ वस्तु है। तो प्रहलाद महाराज कोई जड़ वस्तु थे नहीं, जड़ वस्तु थे नहीं, तो उनमें जो है, लेकिन उनका मन जो है बहुत शांत था, वो उनके मन शांत था, वो सदैव भगवान के विचारों में लगे रहते थे। धीर धीर जन प्रिय प्रिय करो, जो धीर व्यक्ति होते हैं वो कोई ऐसे नहीं कि अगर हम मन क्या बैठे प्रहलाद महाराज तो इसका नहीं यहाँ बैठे दिखने बैठे लेकिन मन कहीं और भाग रहा है, नहीं। वो जड़वत, वो अगर कोई उनके पास कोई कुछ समय बचा हुआ है, 5-10 मिनट समय बचा हुआ तो वो बस भगवान के चिंतन कर, भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं, भगवान का नाम का स्मरण करने में, उनके रूपों का स्मरण करने में, भगवान की, भगवान ने सृष्टि को बनाया, असंख्य असंख्य भगवान के कार्यकलाप है, उनके चिंतन में वो सदैव रहते। व्यर्थ के चिंतन में वो करते नहीं करते, और व्यर्थ की बातें भी, व्यर्थ की शिक्षा भी वो नहीं पढ़ते थे। भगवान की शिक्षाएं पढ़ लिए ऑटोमेटिकली सब कुछ जो उनको प्राप्त हो जाता था, ये भगवान की शिक्षा में सब कुछ भरा हुआ है। तो जब इस प्रकार जब भगवान के एक वस्तु में लीन रहे तो उसको कहा जड़वत मनस्थ था। तो प्रहलाद महाराज उसी प्रकार भगवत भावना से भरे हुए वो हमेशा धीर अवस्था में रहते, जड़वत के समान रहते थे। देखिए अगर जो जड़वस्तु हो, जड़ के समान कोई होता है तो उससे, जैसे अभी हम बद जीव है, ये टेबल आपने ऐसे रखा वैसे ही पड़ा रहा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा टेबल थोड़ा सा अपने अपने आप थोड़ा सा के दूर चला गया, कुछ हो गया तो परेशानी होगी। हम लोगों से क्यों हमारा दूसरों से बनता नहीं है, क्योंकि मित्रता नहीं रहता, क्यों हमारा उनसे हिस्सा देश पैदा होता है, क्योंकि वो अपने मर्जी कुछ करना चाहता है। तो अगर समझो आप अपने बच्चों बोले बेटा तुम ऐसे बैठे रहो तो वैसे बैठेगा तो बड़ा खुशी होगी। तो उसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज जो है बहुत धीर थे, धीर और जड़वत के समान वो जो है कोई भौतिक कार्यकलाप में नहीं, सदैव भगवत भावना भरे रहते थे। तो वो जो प्रहलाद महाराज सभी को, ऐसे व्यक्ति हर कोई पसंद करता है, हर कोई जो है पसंद करता है। जैसे कि जैसे समझ लीजिए यहाँ पर जो है कोई, जैसे भगवान ले लीजिए, भगवान आप भगवान खड़े हैं, आप उन्हें कुछ भी बोलिए वो चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमारा उनसे क्या ना प्रेम बढ़ता है। अब भगवान बीच में कुछ कहना शुरू करे, मेरे लिए पानी लाओ, देखो मंदिर में वहाँ गंदा पड़ा हुआ उसको सफाई करो, तो अगर इसमें बोलना शुरू कर दे तो परेशान हो जाए, कितना काम करवाता है। तो उसी प्रकार जो है तो इसलिए भगवान कुछ बोले रहे इसलिए हमारा उनसे प्रेम है। अभी गुरु के पास हम क्यों नहीं जाते, क्योंकि गुरु हमें तुरंत कुछ आदेश दे देंगे और हम नहीं कर पाएंगे तो डर बना रहता है ना। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज जो है वे जड़वत के समान रहते थे और हर किसी को प्रिय थे। और इस प्रकार जो उनका मन सदैव कृष्ण गृह गृहित आत्मा न वेद जगदी दृश्यम, तो उस प्रकार वो सदैव कृष्ण भावना भावित में रहने के कारण उनको संसार के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, संसार के इंद्रिय तृप्ति से, इंद्रिय तृप्ति में संसार में इतना सुख है, इतना घूमने की तरीका है, बहुत कुछ है संसार में घूमने की, सिनेमा देखने की, ये देखने की, घूमने की, बहुत सारा चीजें हैं, इंद्रिय सुख के संसार में तो भरा हुआ है। सारे बाहर के लोग ये सब जो है हम तो जानते भी नहीं कि कितना कितना बाहर फैसिलिटी है घूमने करने की, इंद्रियों को तृप्त करने की कितना सुविधा है। तो वो चीज़ जो है प्रहलाद महाराज को कुछ पता नहीं चला, जैसे भक्तों को भी पता नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में क्या क्या सुख की सुविधा है, ना कभी देखा है ना कोई मतलब है उससे ना भगवान की सेवा में अगर जीवन व्यतीत हो रहा है कोई मतलब नहीं। तो इसमें प्रहलाद महाराज का भी वैसे स्थिति थी कि जगत में क्या सुख सुविधा है उनको कोई, उसको उनको जो है कोई मतलब ही नहीं था, भगवान की भक्ति में रहते थे। और कह रहे प्रहलाद महाराज थे तो एक राजकुमार, तो उस राजकुमार तो क्या कुछ करते नहीं थे, नहीं इसे बता रहे कि प्रहलाद महाराज बैठते समय कभी बैठते कभी घूमते, खाते सोते पीते बोलते, आसीन पर्यटन अस्नन शयनन प्रवन ब्रुवन अनुसंधनती एतानि गोविंद परिरंभित। तो हर किसी को अच्छा लगता है कि बैठना, मुझे अच्छा सोफा चाहिए, बहुत कॉस्टली सोफा चाहिए। पर्यटन घूमना भी अच्छा लगता है, आसनन खाना अच्छा लगता है, शयनम सोना अच्छा लगता है, प्रविबन पीना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। तो ये सब जो है चीजें अच्छी लगती है, ये सब जो अच्छी लगती है, लेकिन प्रहलाद महाराज को ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। राजकुमार थे, करते थे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि अनुसंधनती एतानि गोविंद परिरंभित, वो भगवान के द्वारा आलिंगित थे, भगवान के द्वारा आलिंगित थे, तो उनको ये सब बाह्य कार्य करने की, बाह्य सुख की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी हम बाह्य सुख की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि अभी हमें भगवान का आलिंगन प्राप्त नहीं हुआ, भगवान का स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ, भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, इस हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का स्वाद हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इससे क्या है कि हमें हमारी भौतिक वासनाओं में हमारी रुचि बनी रहती है। लेकिन प्रहलाद महाराज की इन चीजों में कोई रुचि नहीं थी, घूमना करना ये सब चीजें करना। अब वास्तव में हम अपने जीवन में अगर कोई इन इंद्रिय सुखों की कामना करता है, यही वास्तव में जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है ना? दुख का कारण यही है कि हम जो है और चीजें चाहते हैं। आपको घूमना है तो आपके लिए वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, तीर्थ स्थान है, तो हर जगह सुख का सुविधाएं जो है प्राप्त करें इच्छा करते। आजकल तीर्थ स्थानों में भी वही सब सुविधाएं, एसी रूम प्राप्त हो गया, टीवी प्राप्त होता है, यमुना जी को गंदा कर देते हैं और वृंदावन में स्विमिंग पूल बना देते हैं, उसमें आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो हर जगह जो हम इन इंद्रियों को सुख प्राप्त करने के लिए ही इच्छा करते हैं। वास्तव में जब हम किसी धाम में जाते हैं, हमें जो है ये इंद्रियों को सुख करने की व्यवस्था में लेनी नहीं चाहिए। धाम में जाना है तपस्या करने के लिए, तब भगवान की तपस्या करने से भगवान की असली दर्शन होता है। दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर सब पहाड़ के ऊपर है। क्यों? चाहे जितना बड़ा व्यक्ति भी आए, जितना धनी व्यक्ति भी आए, वो पहाड़ में चढ़ने के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। जब वो इतना मेहनत करके भगवान का दर्शन करेगा तो उसको वास्तव में भगवान का दर्शन का फल प्राप्त होगा, उसको भगवान को जो है वास्तव में दर्शन कर पाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें भगवान की दर्शन करने में मेहनत करना चाहिए। तो हम धाम में जाकर भी इन इंद्रिय सुखों की वस्तुओं को ज्यादा हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो इंद्रिय सुख जो है यही एकमात्र सबसे बड़ा दुखों का कारण है। क्योंकि हम लोग देखिए, लोग जो है इंद्रिय सुख के लिए कितनी सारी व्यवस्था, सारा दुनिया ही जो है इंद्रिय सुख की व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ। दिन प्रतिदिन जैसे समय बीतते जा रहा, नई नई सुविधाएं आ रहा। आज से 10-15 साल पहले कोई मोबाइल का सिस्टम नहीं था, आजकल मोबाइल में हर सब कुछ मिल जाता है, आपको कंप्यूटर भी मिल जाता है, नेट भी मिल जाता है, सब कुछ कर लेते हो। ये सब सुविधाएं किस लिए बढ़ रहा है कि इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, और जितना इंद्रियों तृप्त करने के लिए प्रयास करते हैं संसार में, उतना ही जो है संसार में कष्ट दुख समस्याएं बढ़ती जाती है। पहले के समय में लोगों में इतनी चेतना गिरी हुई नहीं थी, लेकिन आज चेतना जो गिरी हुई है। तो क्योंकि ऐसे जितनी इंद्रिय सुख की सुविधाएं बढ़ता है, उतना ही आदमी की चेतना नीचे गिरते जाता है। तो प्रहलाद महाराज भगवान के द्वारा आलिंगित थे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान का जो है, भगवान के जो है कृष्ण भावना भावित में हम भी लगे रहे, जिससे क्या होगा, हमें भौतिक सुख सुविधा में हमारे जीवन को व्यर्थ करके ये समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारा शरीर में शक्ति है, इसका हमें सदुपयोग करते भगवत भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। और कभी कभी प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों में से कभी कभी प्रहलाद महाराज रोते थे, इसलिए इसलिए नहीं रोते मेरा पिताजी में कि हाँ मेरा पिताजी असुर है ये है वो, इसलिए नहीं रोते। ये भगवान के जो वैकुंठ पति चिंता सबलम चेतस, जो वैकुंठ पति का, वैकुंठ के स्वामी भगवान का इतनी प्रबल चिंता में रहते थे, उस चिंतन में रह के कभी कभी भगवान को, हाँ मैं भगवान को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया, इस भावना से वो कभी कभी रोते थे। ये रोना दिव्य रोना है, भौतिक रोना नहीं है। और कभी 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 हंसते थे, और कभी कभी आनंद में भर कर वो गाते थे, आनंद में भर कर गाते थे, और कभी कभी हंसते थे। ये सब भगवत भावना में रहकर प्रहलाद महाराज करते थे। और कभी कभी बहुत उत्कंठित होकर नादति कोचित उत्कंठ, कभी कभी उत्कंठा में भरकर प्रहलाद महाराज हा कृष्ण कह के पुकारते थे। बिलज नृत्यंती क्वेश्चन, कभी कभी जो है अपनी लज्जा को त्याग करके वो नृत्य करते थे। जब भगवान के मंदिर के सामने जब नाचते थे, संकोच नहीं करना चाहिए कि कोई देख रहा है या क्या है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए। अभी ऐसे नहीं कि ऐसे तो अभी हम नहीं कर सकते, भगवान के सामने जब नृत्य करें तो हम ये देखना चाहिए भगवान हमारे, भगवान जो है हमें देख रहे कि मैं नृत्य कर रहा हूँ। अगर वैकुंठ में जाऊंगा तो वहां भी नृत्य करना पड़ेगा, भगवान कहेंगे तुम नाचो, तो मुझे नाचना आता ही नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिया संसार में है? तो यहाँ पे सब ट्रेनिंग लेना चाहिए, तब वैकुंठ में हम जो है आराम से रह सकते हैं। तो कभी कभी लज्जा छोड़ के नाचते थे, और फिर कभी कभी इस प्रकार जो अनुभव करते थे कि मैं भगवान से एकाकार हो गया जो है, तो ये एक शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है। ये मायावाद या परमात्मावादी एकाकार जैसे नहीं है। परमात्मावादी कभी कभी हृदय परमात्मा का दर्शन करते करते ये सोचते कि मैं ही परमात्मा बन गया हूँ, मैं ही वही परमात्मा हूँ, सोहम मैं वही हूँ। और मायावादी जो है क्या करते हैं, बस हम भी जो है जब हम अभी जो भी हम भक्ति कर रहे हैं या जो भी उनकी जो साधना है, वेद पाठन कर रहे, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, वो बाद में भगवान बनने की, उस प्रकार से भिन्नता थी प्रहलाद महाराज का। जैसे गोपियों का भी इसी प्रकार तन्मयता के कारण जो है इस ऐसे भावनाएं पैदा होती हैं। तो जैसे हम देखते हैं गोपियाँ जो है इसी प्रकार, जब भगवान कृष्ण उनको जब छोड़ के चले गए थे, तो भगवान के विरह में इतनी तन्मयता हो चुकी थी कि वो जो है खुद ही कृष्ण का अनुकरण करने लगती थी। कोई गोपी जो अपने चुन्नी को उठाकर आवाज, देखो मैंने गोवर्धन को उठा लिया हूँ, तुम सब लोग यहाँ आ जाओ, तो कृष्ण का अनुकरण करने लगती थी। ये भक्ति की बहुत उच्च अवस्था की बात है। तो प्रहलाद महाराज भी इस प्रकार से जब भगवान की भावना से युक्त होकर इतनी तन्मय हो जाते थे कि लगते कि मैं भगवान से एकाकार हो गया। तो ये एक शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और फिर कभी कभी प्रहलाद महाराज को ऐसे लगता था कि भगवान का मुझे कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, कहके कभी कभी वो रोने लगते थे, आनंद के अश्रु प्रभावित करते हुए अर्ध उन्मिलत नेत्र से कभी कभी आंसू को बहाते थे। तो इस प्रकार कभी कभी प्रहलाद महाराज जो है इस प्रकार वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो भगवान की सेवा तो वहां ऐसे हिरण्यकशिपु के महल में कोई डीटीस रख के तो पूजा पाठ करना या मंदिर में झाड़ू मारना, आरती करना, ऐसा तो नहीं कर सकते थे। लेकिन इस भगवान के स्मरण में, भगवान का दर्शन में, भगवान का चिंतन में, भौतिक विषयों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर, ये भी भगवान की भक्ति है। जब किसी को कोई सुविधा प्राप्त ना हो भगवान की पूजा करने का, उसको चाहिए कि भगवान का श्रवण कीर्तन करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान के विषय सुने, भागवतों को पढ़े, ये भी भगवान की सेवा है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज जो भगवान की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन प्रहलाद महाराज इतना शुद्ध भक्त, इतना प्योर भक्त थे कि उनको जब कोई अभक्त, कोई दीन दुखी उनको देखकर उनको भी बड़ा आनंद प्राप्त होता था। क्योंकि भक्त जो है वो हिर्षा द्वेष से मुक्त होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। जब भगवान से जिस भगवान से जिसने प्रेम किया सारा दुनिया उससे प्रेम करेगा। तो इसलिए हमें इसलिए भक्तों को चाहिए कि अपने हृदय को शुद्ध बनाए। अगर सारा संसार हमें हम लोगों से भयभीत क्यों होते हैं, क्योंकि भयभीत क्योंकि हमारे अंदर भय है और लोगों से आप डरते हैं तो हमारे लोग हमारा कोई नुकसान ना करें। जैसे हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे वो हिंसा द्वेष से मुक्त थे, तो जब उनको जो है उनके सेवक बिहारी जी जब उनको लेके जा रहे थे नवदीप धाम वृंदावन से, तो रास्ते में शेर मिल गया, तो शेर मिल गया तो उनका बिहारी तो डर गया, बाबा जी शेर खा जाएगा। तो प्रहलाद जगन्नाथ बाबा जी महाराज बोले नहीं वो शेर नहीं है, वो महाप्रभु का चेला है। अब वास्तव में वो शेर जो चला गया, क्यों? क्यों शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त को जो है हर कोई प्रेम करता है। तो उसी तरह प्रहलाद महाराज को जो अभक्त थे, जो नॉन डिवोटी, जो हिर्षालु थे, जो असुर थे वो भी उनसे प्रेम करते थे। ऐसे प्रहलाद महाराज सहपाठी तो उनसे प्रेम करते ही थे, लेकिन साथ में जिस देख लो प्रहलाद महाराज के महल में अन्य जो बड़े बड़े असुर थे तो वो भी उनसे जो है प्रेम करते थे। आगे पता चलेगा कि जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम जाओ प्रहलाद को मारो, तो जब प्रहलाद महाराज को मारने के लिए जाते थे तो उनको भी डर लगता था। तो उनसे प्रेम उनको देखते ही जो है उनका हृदय परिवर्तन आता था। तो बहुत डरते हुए जो है वो लोग जो है प्रहलाद महाराज को दंड देना नहीं चाहते थे। फिर बाद में उसके फोर्सफुली करने पर उन लोगों ने कुछ लोगों ने दिया। तो इस प्रकार जब भगवत भक्त होते हैं उनको हर कोई प्रेम करते हैं। तो ये उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमें सारा संसार हिंसा द्वेष, कोई मुझे शत्रुता कर रहा है, कोई मुझे मेरे नुकसान करना चाहता है, क्यों हमें लगता है? क्योंकि हम हमारे अभी हृदय अशुद्ध है, हमारे हृदय में सब भरा हुआ है, इसलिए हमें संसार जो वैसे ही दिखाई देता। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, अन्य रूप से भगवत भक्ति में लगे रहेंगे, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हम भक्ति में लगे रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ प्रेम करेगा। आज प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी को हर कोई क्यों प्रभुपाद जी में आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, तो इसीलिए सब उनसे प्रेम करते हैं। तो वास्तविक यही चीज अगर हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इन जो काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या को दूर करें, तो जिससे कि हमारे जीवन में हम जो है खुद संतुष्ट होंगे और हमें लोगों से हमें कोई भय और चिंता से मुक्त रहेंगे। तो प्रहलाद महाराज कुछ दिव्य गुण है और प्रहलाद महाराज बताते हैं कि देखो प्रहलाद महाराज महाभागवत और महात्मा थे। प्रहलाद नारद मुनि बता रहे महाभागवत भी थे, महाभागवत और भागवत उत्तम और महात्मा। ऐसे प्रहलाद महाराज जो है ऐसे प्रहलाद महाराज दिव्य गुण है। तो ऐसे प्रहलाद महाराज अभी शिक्षाएं देंगे इस अध्याय में, तो इस अध्याय को हमें सुनना चाहिए, उनकी शिक्षा को प्रयास करना चाहिए। हम जितना ज्यादा हो सके हम उसको ग्रहण करें, अपने जीवन में पालन करें, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हरे कृष्ण भगवान की श्री श्री राधाराधिकरण भगवान की प्रहलाद महाराज की ग्रंथराशि भागवतम की गौर प्रेमानंद।